का था, रूह वही, रूप नया।
आप सुनने जा रहे हैं कहानी छलावा और इसके लेखक हैं महेश दुबे। पेश है आपके सामने छलावा कहानी का भाग एक। शिव कुमार बख्शी मुंबई का जाना माना प्राइवेट डिटेक्टिव था। इसके काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स थे। अनेक तलाक के और व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के केसों में इसकी इन्वेस्टिगेशन से उद्योगपतियों को काफी लाभ पहुंचा था और इन्होंने शुक्रगुजार होने के साथ काफी बड़ी बड़ी रकमें देकर शिव कुमार को इस स्थिति में ला खड़ा किया था कि वो वर्ली सी फेस पर एक शानदार अपार्टमेंट और दादर प्रार्थना समाज पर एक आलिशान ऑफिस का मालिक था और BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां अफोर्ड कर सकता था। कई ऐसे लोग जिनकी पकी पकाई खीर में बख्शी के कारण मक्खी पड़ गई थी, वे इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वाधवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक नारायण वाधवा की भूतपूर्व पत्नी नीलिमा, जिसे शिव कुमार की काबिलियत से चरित्रहीन सिद्ध करके वाधवा साहब ने तलाक पाया था और बदले में उन्हें चिड़िया के चुग्गे जितनी कीमत अदा करनी पड़ी थी, बख्शी से खूब खार खाती थी। ऐसे और भी लोग थे। शिव कुमार अपनी लाइफस्टाइल और फिल्म स्टारों जैसी पर्सनालिटी के कारण उच्च वर्ग के दायरे में काफी लोकप्रिय था और आए दिन होने वाली पार्टियों की शान था, जो उसके धंधे के लिहाज से बहुत अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि जासूसी के धंधे में चुप्पा, गुमनाम और अपरिचित व्यक्ति जितना सफल हो सकता था, उतना वो व्यक्ति नहीं जिसे हर कोई जानता पहचानता हो। पर बख्शी बहुत काबिल जासूस था और भेस बदलने में अपना सानी नहीं रखता था। एक बार भिखारी का रूप धरकर उसने 15 दिनों तक जासूसी की थी और ड्रग्स का एक बहुत बड़ा जखीरा पकड़वाया था। मुंबई पुलिस भी बख्शी की योग्यताओं की कायल थी और आए दिन उससे मदद लिया करती थी। आज इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस के कमिश्नर सुबोध कुमार ने बख्शी को मिलने के लिए बुलाया। सुबोध कुमार बहुत जहीन और सख्त अफसर थे और मुंबई को अपराध मुक्त बनाने के लिए कटिबद्ध भी थे। बख्शी थोड़ी देर तक उनके ऑफिस के बाहर बैठकर इंतजार करता रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष के एक भारी भरकम नेता के साथ सुबोध कुमार की मीटिंग लंबी खिंच गई थी। फिर जब नेताजी अपने लाव लश्कर के साथ विदा हुए तो सुबोध कमिश्नर साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ। कमिश्नर ने गर्म जोशी से उसका स्वागत किया और बोले, अरे आओ आओ भाई बख्शी, माफ करना, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। जवाब में मुस्कुराकर बख्शी ने हल्का सा सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठ गया। औपचारिक बातों के बाद कमिश्नर साहब मुद्दे की बात पर आ गए। दरअसल मुंबई में पिछले कुछ दिनों से एक सीरियल किलर का आतंक छाया हुआ था। पिछले महीने 18 लोग मारे गए थे। समूची मुंबई में त्राही त्राही मची हुई थी। सुबोध कुमार पर ऊपर से भारी प्रेशर पड़ रहा था और पुलिस महकमा भी काफी मेहनत कर रहा था। लगभग हर नोन क्रिमिनल पर पुलिस का शिकंजा कसा जा चुका था और उनसे पूछताछ की जा रही थी, परंतु परिणाम वही, ढाक के 3 पात। आखिर हार कर आज कमिश्नर ने बख्शी को बुलाया था ताकि उसकी सलाहियतों का फायदा उठाया जा सके। बख्शी ने कमिश्नर को धन्यवाद देते हुए इस काम को करना स्वीकार कर लिया। फिर कमिश्नर ने विक्रांत मोहिते नामक एक नौजवान सब इंस्पेक्टर को बुलाकर बख्शी साहब को पूरा सहयोग देने का आदेश दिया। फिर सब हाथ मिलाकर मीटिंग बर्खास्त करने ही वाले थे कि एक वर्दीधारी हड़बड़ाया सा भीतर दाखिल हुआ। कमिश्नर ने नजरें उठाई तो जल्दी से सैल्यूट करता हुआ बोला, सीरियल किलर ने 19वां शिकार कर लिया है। माहिम खाड़ी में एक आदमी की लाश मिली है। फौरन बख्शी अपनी आलिशान कार से घटनास्थल की ओर रवाना हुआ और विक्रांत मोहिते की पुलिस जीप सायरन बजाती हुई उसके आगे चल पड़ी। माहिम दादर और बांद्रा के बीच एक निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का बहुत बड़ा इलाका था, जहां धारावी नाम की एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी भी पाई जाती थी। वहां एक समुद्री खाड़ी भी थी जिसे माहिम खाड़ी कहा जाता है। इसी खाड़ी से एक 50-55 वर्षीय व्यक्ति की लाश निकाली गई थी, जिसकी बाई आंख में बर्फ काटने का सुआ मूठ तक घुसा हुआ था और यही एक्शन इसे निर्विवाद रूप से सीरियल किलर का शिकार बता रहा था। सीरियल किलर ने अभी तक अपनी हर हत्या बाई आंख में सुआ घोंप कर ही की थी। शिकार की आंख से रक्त बहकर उसके गालों को भिगोता हुआ गर्दन पर जमा हुआ था। माहिम की खाड़ी में ज्वार के समय ही पानी चढ़ता है और यह दलदल में पीठ के बल गिरा हुआ मिला था तो रक्त के निशान धुले नहीं थे। हर हत्या की तरह इसका भी ना कोई चश्मदीद गवाह था और ना ही कोई सबूत। बर्फ काटने के सुए पर भी कोई चिन्ह नहीं थे। उसके मार्क को ग्राइंडर से घिस दिया गया था। लाश के कई फोटो लिए गए, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बख्शी अपने ऑफिस में लौट गया और इस छलावे को पकड़ने की योजना बनाने लगा। अपने ऑफिस में बैठा विक्रांत मोहिते घटनाक्रम पर विचार कर रहा था। तमाम उठा पटक के बावजूद किसी तरह का सूत्र नहीं मिल पा रहा था। हर बार एक नए चमचमाते सुए से हत्यारा लोगों को मार रहा था। मुंबई शहर में छोटी बड़ी हजारों हार्डवेयर की दुकानें थीं और सब में वैसे ही सुए बिकते थे। इन सुओं के अलावा किसी भी लाश के पास कुछ सबूत नहीं मिल पाया और उस छलावे ने भिन्न भिन्न हैसियत के लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिसके कारण उसके सामाजिक स्तर के बारे में कोई विचार बना पाना संभव ही नहीं हो रहा था। अब बख्शी के आगमन से थोड़ी उम्मीद हुई थी, क्योंकि बख्शी बहुत काबिल तो था ही, व्यक्तिगत रूप से भी मोहिते बख्शी का बड़ा प्रशंसक था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक कमरे में बख्शी का आगमन हुआ। अरे वाह, मोहिते उठकर सलाम करता हुआ बोला, अभी मैं आपको याद कर रहा था सर, आप आ गए। बैठो बैठो। उसके कंधे पर दबाव देते हुए बख्शी बोला और खुद भी उसके सामने की सीट पर बैठ गया। फिर मोहिते की आंखों में झांकता हुआ बोला, हमें साथ काम करना है तो ऐसी औपचारिकताओं में ना पड़ना ही बेहतर है। हत्यारा बहुत तेज है, हमें उससे भी तेज होना पड़ेगा। अब जल्दी चाय पिलाओ, फिर हॉस्पिटल चलकर लाश का मुआयना करते हैं। मोहिते ने तुरंत मेज पर लगी घंटी बजाई और चिल्लाया, ए मारे, दो स्पेशल चाय। बख्शी और मोहिते दोपहर बाद पुलिस अस्पताल पहुंचे। बख्शी ने वो सुआ लेकर थोड़ी देर तक उसे ध्यानपूर्वक देखा, जो मृतक की आंख से निकाला जा चुका था। उसने हाथ में सुआ पकड़ा और इससे पहले कि मोहिते संभल पाता, उसे अचानक मोहिते की बाई आंख को निशाना बनाकर जोर से घुमाया। मोहिते कुर्सी पर बैठा ध्यान से बख्शी को देख रहा था। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई और वह कुर्सी समेत पीछे की ओर उलट गया। तब तक बख्शी का हाथ उसके मुंह से कुछ इंच पहले ही स्थिर हो चुका था। बख्शी ने एक जबरदस्त फरमाइशी ठहाका लगाया और मोहिते की हड़बड़ी का मजा लेने लगा, जो अब किसी तरह उठ चुका था। अरे आपने तो मार ही डाला था सर, वो रुआंसी आवाज में बोला। अरे मेरे को कम से कम बता तो देते। बताने पर मुझे वो प्रतिक्रिया नहीं मिलती जो मैं देखना चाहता था। मोहिते, मैं देखना चाहता था कि हत्यारा किस तेजी से वार करता है और मकतूल की क्या प्रतिक्रिया होती है, बख्शी बोला, जो अब तक उसकी बौखलाहट देखकर मुदित था। फिर दोनों मॉर्ग पहुंचे, जहां मृतक का शव पड़ा हुआ था। ये एक सेल्समैन था जो कल ही सूरत से बिजनेस के सिलसिले में यहां आया था और कोई सस्ता होटल ढूंढने के लिए शायद माहिम के उस इलाके में भटक रहा था जहां कातिल उससे टकरा गया होगा। उसकी लाश देखकर पता चल रहा था कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया और कातिल के एक ही नपे तुले वार ने उसकी जान ले ली। बख्शी ने उसकी लाश का बारीकी से मुआयना किया और लाश को उलट दिया और उसकी पीठ को देखते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर जो हाहाकारी भाव आए, उन्हें देखकर मोहिते भी घबरा गया। वो अभी तक थोड़ी दूरी पर खड़ा था, अब तुरंत झपट कर लाश के पास पहुंचा और उसने भी झांक कर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर मानो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कातर दृष्टि से बख्शी की ओर देखा। उसे बख्शी के जबड़े भी बुरी तरह कसे हुए महसूस हुए और उसने बख्शी के मुंह से निकल रहे शब्दों को सुना, छोड़ूंगा नहीं। अरे देवा, गणपति बाप्पा, ऐसा कैसे झाला बाबा, मोहिते खुद से ही बड़बड़ा रहा था। वो इधर कैसे आ गया। दरअसल मृतक की पीठ पर एक सफेद कागज चिपका हुआ था, जिस पर अखबार की कतरने काट कर एक इबारत बनाकर चिपकाई गई थी, जिसमें लिखा हुआ था, चुन चुन के मारूंगा। और पेंसिल से एक व्यक्ति का चेहरा बना हुआ था, जिसकी आंख में सुआ घुपा था। बख्शी ने साफ साफ मोहिते की देह में उठती झुरझुरी को महसूस किया। बख्शी ने फौरन उसे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को बुला लाने को कहा। थोड़ी देर में सरकारी डॉक्टर हाजिर हुआ। ये एक रिटायरमेंट की अवस्था पर पहुंचा हुआ झोल झाल सा आदमी था, जिसने अपनी आंखों पर तार का बाबा आदम के जमाने का चश्मा पहन रखा था और स्टेथोस्कोप उसने ऐसे गले में लपेट रखा था जैसे मदारी सांप लपेट रखते हैं। ये कागज विक्टिम की पीठ पर कहां से आया? बख्शी ने सीधा सवाल किया। क्या पोस्टमार्टम करते वक्त आपने पीठ देखी थी? डॉक्टर हंसने लगा। मोहिते ने आंखें तरेरने की कोशिश की तो डॉक्टर ने ऐसे लहजे में उत्तर दिया मानो नाक से मक्खी उड़ाई हो। वो बोला, आप लोगों की मिलाकर जितनी उम्र होगी ना, उतने सालों से पोस्टमार्टम कर रहा हूं। पोस्टमार्टम में लाश का एक एक रोम नाप लिया जाता है, समझे? ये पेपर किसी ने बाद में यहां चिपकाया है। और कुछ पूछना है तो जल्दी करो, एक लाश उधड़ी हुई मेरा इंतजार कर रही है। अब दोनों क्या कहते? उसे जाने को कह दिया, पर दोनों बड़े हैरान हुए। इस मॉर्ग के दरवाजे पर हमेशा एक चौकीदार मौजूद रहता है, पर किसे पता वो कहीं पान सुपारी खाने चाय पीने चला गया हो और कातिल यहां कागज चिपका गया हो। वैसे भी उस मॉर्ग में कौन आना चाहेगा जहां लाशें स्वागत को मिले। तुरंत चौकीदार की पेशी हुई। मोहिते की एक ही घुड़की में उसने सब बक दिया कि वो इधर उधर पान तंबाकू लेने या चाय पानी के लिए आया जाया करता है। सुनकर दोनों ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। वैसे भी यह खूब बड़ा अस्पताल था जहां खूब आमद रफ्त होती रहती थी। उसे डिसमिस करके वे चलने लगे तो बख्शी टॉयलेट में घुस गया और दो मिनट बाद बाहर आकर मोहिते से बोला, चलो। दोनों बाहर निकल ही रहे थे कि घिघियाता हुआ एक वार्ड बॉय दौड़ता हुआ आया और खुद को संभाल न पाने के कारण इनके आगे ही मुंह के बल गिरा। बख्शी ने उसे झपट कर उठाया और पूछा कि क्या हुआ। जवाब में उसके मुंह से बोल ना फूटे। उसकी आंखें मानो उसकी कटोरियों से उबली पड़ रही थी। उसने एक दिशा में उंगली उठा दी। वे दोनों बगुले की तरह दौड़ते हुए उस दिशा को पहुंचे और सीढ़ियों की ओर घूमते ही बुरी तरह ठिठक गए। सामने चौकीदार चौखट से टेक लगाकर हाथ लटकाए खड़ा था। उसकी दाई आंख खुली हुई थी और उनमें भारी आश्चर्य की झलक थी, पर बाई आंख थी ही नहीं, क्योंकि उसमें एक सुआ जड़ तक धंसा हुआ था। वो सुआ इतने वेग से मारा गया था कि उसकी नोक खोपड़ी को छेदती हुई पीछे की चौखट में जा धंसी थी और चौकीदार का शव उसी के सहारे खूंटी से टंगा सा लग रहा था। उसकी आंख से अभी भी खून परनाली की तरह बह रहा था और बदन गर्म था। फौरन अस्पताल घेरेबंदी करके चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई और एक एक आदमी को टटोला गया, पर छलावा नहीं मिला। टॉयलेट की एक खिड़की टूटी मिली, शायद वो उसी में से फरार हो गया था। बख्शी ने बताया कि जब वो टॉयलेट में घुसा था तब खिड़की सही सलामत थी। पुलिस अस्पताल में घुसकर ऐसी वारदात कर देने से छलावे की दीदा दिलेरी का आभास होता था। अभी तक उसे कोई विक्षिप्त इंसान मानने की भूल कर रही पुलिस को अपना मार्ग बदलने को मजबूर होना ही था। वो कोई बहुत शातिर अपराधी था जिसका खून करने का मकसद कोई नहीं समझ पा रहा था। विक्रांत मोहिते पुलिस चौकी में अपनी कुर्सी पर बैठा गहन सोच में डूबा कल की अस्पताल की घटना की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा था। कातिल ने उसके मॉर्ग में पहुंचने से पहले ही लाश की पीठ पर कागज चिपका दिया, मतलब वो पहले से ही वहां मौजूद था। फिर जब दोनों ने मिलकर चपरासी से पूछताछ की और मुख्य द्वार की ओर रवाना हुए, तब बीच में बख्शी सर टॉयलेट में गए। वहां उन्हें 2 मिनट लगे और फिर मुख्य द्वार तक पहुंचने में 2 से 3 और मिनट लगे होंगे। इस बीच कातिल ने चौकीदार को मार भी दिया और खिड़की तोड़कर फरार भी हो गया। पता नहीं साला आदमी था कि भूत। हो सकता है जब बख्शी सर टॉयलेट में थे तो भी वो वहां मौजूद रहा हो। मोहिते की पीठ में भय की सिहरन दौड़ गई। अरे कौन है वो यार, उसकी पहुंच तो यहां तक भी हो सकती है। क्या पुलिस चौकी में कोई छलावा हो सकता है क्या? अचानक फोन की घनघनाहट ने उसकी विचार श्रृंखला तोड़ दी। दूसरी ओर से बख्शी की आवाज आई, मोहिते। यस सर, मोहिते स्पीकिंग, बोलिए। सुनो, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि छलावा कोई आपस का ही आदमी है, हमारे आसपास का ही कोई व्यक्ति। तुम जरा आंख कान खोले रहो और किसी पर विश्वास मत करो। कातिल बहुत घातक और क्रूर है। बाद में बाकी बातें करता हूं, बख्शी ने जल्दी में कहा और फोन कट कर दिया। अब मोहिते को नई चिंता लगी।
कौन हो सकता है साला? क्या चौकी का कोई हवलदार या कोई अफसर? ए चाय पिलाने वाला अन्ना तो नहीं है छलावा?
उसके सभी मुलाजिम पुराने और आजमाए हुए थे सिवाय एक के। विलास राहुरकर नाम का एक नौजवान सिपाही हाल में ही भर्ती हुआ था, जिसकी पृष्ठभूमि अजीब सी थी। पहले वो साइंस का विद्यार्थी था, कुछ समय उसने डॉक्टरी में जाने का विचार किया, फिर अचानक उसकी रुचि इंजीनियरिंग में हो गई। पुलिस स्टेशन में ही उसे कमरा रहने के लिए मिला हुआ था, जिसमें उसने दुनिया भर का काठ कबाड़ इकट्ठा कर रखा था और नई नई चीजें बनाने की कोशिश करता था। कुछ दिन पहले उसने एक छोटा सा ड्रोन विमान बनाया था, जो छोटी सी मोटर के सहारे उड़ता था और उस पर आधे किलो की चीज बांधी जा सकती थी। उसने कई बिल्लियां पाल रखी थीं और अपनी तनख्वाह का अधिकांश भाग अपने अजीबोगरीब शौकों पर खर्च कर देता था। वो लातूर का रहने वाला था, पर अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं रखता था, काफी कम बोलता था और अपने में ही खोया रहता था।
क्या वो छलावा हो सकता था?
मोहिते ने उस पर कड़ी नजर रखने का निश्चय किया। उसने आवाज देकर विलास को बुलाया। वो चुपचाप सिर झुकाए अपना काम कर रहा था। आवाज सुनते ही तुरंत मोहिते के पास आया और सैल्यूट करके खड़ा हो गया। मोहिते ने उसे बैठने को कहा और पूछा, कैसा है विलास?
ठीक हूँ सर।
विलास, तुम्हें कैसा लग रहा है अपना काम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मोहिते ने पूछा। विलास बोला,
सब ठीक है सर।
ये छलावे के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? अचानक मोहिते ने पूछा और उस समय उसकी नजरें किसी एक्सरे की तरह विलास के मनोभाव पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। विलास ऐसे सवाल के लिए कतई तैयार नहीं था। वो साफ साफ हड़बड़ा गया, हकलाता हुआ बोला,
सर काफी चर्चा है उसकी, बाकी आप बड़े लोग जाने।
फिर थोड़ा संभल कर उसने आगे कहना शुरू किया,
सर वो जल्दी पकड़ा जाए तो ही अच्छा, अब तो हम पुलिस वालों को भी डर लगने लगा है उससे।
मोहिते ने सहमति में सिर हिलाया और बोला,
अच्छा तुमने तो डॉक्टरी भी पढ़ी है ना?
जरा बताओ तो, सुए के एक ही वार से हमेशा इंसान मर जाता है, ऐसा क्यों? अब विलास उत्साह में आ गया।
सर आप कातिल की स्ट्रेटजी देखो ने, वो सुआ मारता कहाँ है? बाई आंख के भीतर ही, दिमाग को। आंख नाजुक होती है ना सर, तेज सुआ आंख को फोड़ता हुआ तुरंत दिमाग को हिट करता है। वैसे कहीं और से मारा जाए तो खोपड़ी दिमाग को बचा सकती है, क्योंकि खोपड़ी नरम दिमाग के लिए हेलमेट का काम करती है ना सर। पर आंख के रास्ते मारने पर खोपड़ी कोई अवरोध पैदा नहीं कर सकती और एक ही वार में आदमी सेकेंडों में मर जाता है सर। विलास अपनी ही धुन में बोले जा रहा था और मोहिते की आंख उसके हर भाव को बारीकी से नोट कर रही थी। मोहिते का शक गहराता जा रहा था। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का मेल, पुलिस सिपाही होने के नाते हर जगह पहुंचने की आसानी और संदिग्ध पृष्ठभूमि। अपना गाल खुजाता हुआ मोहिते बोला,
ए तुम आजकल नया क्या बना रहे हो भाई?
कुछ विशेष नहीं सर,
विलास बोला। चलो, अचानक मोहिते उठकर खड़ा होता हुआ बोला,
देखो तो तुम आजकल क्या बना रहा है हा?
विलास के चेहरे का रंग उड़ गया। मोहिते ने साफ साफ उसके चेहरे पर भय की छाया को महसूस किया। उसका शक दोबाला हो गया। उसने कड़ाई से पूछा, क्यों, क्या बात है, कोई ऐतराज है तुमको?
विलास बुरी तरह हकलाने लगा।
मोहिते उसे जबरन उसके कमरे तक लाया और दरवाजे में कदम रखते ही ठिठक कर जड़ हो गया। सामने ग्राइंडिंग मशीन पड़ी थी और उसके बगल में दो बर्फ काटने के सुए पड़े हुए थे। ग्राइंडर और सुआ देखते ही मोहिते का दिमाग भन्ना गया। उसने एक सुआ उठाकर देखा तो उसका मार्क घिसा हुआ था। अब तो उसे पूरा विश्वास हो गया था कि विलास ही छलावा है। उसने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और विलास पर तान दी। विलास के छक्के छूट गए। उसने तुरंत चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ सर? वो बुरी तरह कांप रहा था। मोहिते ने शब्दों को मानो चबाते हुए पूछा,
ए सोलो, तू ही है ना छलावा?
अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? विलास की मानो रुलाई फूट पड़ी। मोहिते ने फिर कहा,
तूने ये सुए यहां रख के है ना मार्क घिस कर? बोल बोल, अब किसे मारना चाहता है?
विलास रोता हुआ बोला, सर मैं इन सुओं से काम कर रहा हूं आजकल और उनके मार्क हाथ में गड़ते हैं, इसलिए जरा से घिस दिए हैं।
मोहिते बोला, जब तू यहां आने को हिचकिचाया तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। अब तू नहीं बच सकता। चल दोनों हाथ उठाकर सिर पर रख ले और चौकी में चल। जरा भी होशियारी दिखाई कि बुलेट दिमाग में गाड़ दूंगा।
अचानक कमरे के बाहर थोड़ी सी आहट हुई और सेकंड के सौवें हिस्से के लिए मोहिते का ध्यान भंग हुआ और उतनी ही देर में विलास ने एक ओर को छलांग लगाई और बाथरूम में घुस गया। मोहिते ने फायर किया पर गोली बाहर लगे वॉश बेसिन से टकराई और वो चूर चूर हो गया। विलास ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं निर्दोष हूँ। मोहिते दरवाजे के पास आकर उसे समझाने लगा कि अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप हाथ सिर पर रखकर बाहर आ जाओ। पर विलास अंदर से ही रोता गिड़गिड़ाता रहा। मोहिते ने धीरे से बाहर की कुंडी लगा दी और चौकी से मदद लेने चल दिया। थोड़ी ही देर में मोहिते भारी लाव लश्कर के साथ कमरे में पहुंचा और बाथरूम के बाहर से विलास को आवाज लगाई पर उसे कोई उत्तर न मिला। मोहिते घूम कर पिछवाड़े में गया तो वहां एक छोटी सी खिड़की थी जिस पर सलाखें लगी हुई थी, पर उसमें से निकल भागना असंभव था। मोहिते ने वहां से झांकना चाहा तो कुछ दिखाई ना पड़ा, वह असमंजस में पड़ गया। वो फिर घूमकर कमरे में आया और हवलदारों को दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। कुछ ही समय में दरवाजा टूटकर एक और गिर पड़ा। अत्यंत सावधानी से मोहिते रिवॉल्वर ताने अंदर दाखिल हुआ। अंदर खिड़की के नीचे वाली दीवार से सटकर विलास पेट के बल पड़ा हुआ था, इसलिए वो खिड़की से दिखाई ना पड़ा। शायद बेहोश हो गया होगा, ऐसा सोचकर मोहिते ने उसे पकड़कर अपनी ओर घुमाया तो उसका दिल मानो कूद कर उसके हलक में आ फंसा। ऐसा नहीं हो सकता, उसके मुंह से निकला। सारे दूसरे हवलदार भी भौंचक्के से रह गए। विलास की बाई आंख में जड़ तक एक सुआ घुसा हुआ था जिसमें से भल भल करके रक्त बह रहा था और उसकी खुली हुई दाई आंख बेहद भयानक लग रही थी। मोहिते ने उसकी नब्ज देखी तो वो डूब चुकी थी। छलावा एक बार फिर जीत गया। बुरी तरह हताश मोहिते अपने कार्यालय में पहुंचा तो वहां बख्शी बैठा हुआ था। मोहिते ने उसे जल्दी जल्दी सारी बात बताई तो बख्शी ने उसके साथ जाकर घटना स्थल का मुआयना किया। बाथरूम के पीछे की खिड़की के पास जाकर उसने बारीकी से मुआयना किया तो उसके होंठ गोल हो गए और वो धीमे धीमे सीटी बजाने लगा। फिर भीतर आकर उसने काठ कबाड़ को खंगाला तो उसके माथे पर बल पड़ गए। फिर वो वहां से निकला और मोहिते के कार्यालय में आकर बैठ गया और बोला, चाय मंगवाओ मोहिते, तुमने एक केस हल कर लिया है। मोहिते मुंह दबाए देखता रह गया, फिर घंटी बजाकर चाय का ऑर्डर दिया और बख्शी की ओर सुनने की मुद्रा बनाकर प्रतीक्षा करने लगा। बख्शी बोला, विलास छलावा नहीं था, ये बात तो अब तुम भी जानते हो, पर वो अवैध हथियार बनाता था, ये मुझसे सुनो। पिछले दिनों मुंबई में कई आपराधिक घटनाओं में से कई गैर लाइसेंसी कट्टे और रिवॉल्वर मिले थे, वो विलास ही अपने कमरे में चोरी छुपे बनाता था। पुलिस होने और कुछ वैज्ञानिक प्रयोग की आड़ में इसका अपराध छुपता रहा, पर आज जब तुमने इसका कमरा जांचना चाहा तो वो घबरा गया। इसे लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए ये तुम्हें कमरे में लाने से हिचक रहा था। फिर जब तुम इसे छलावा साबित करने पर तुल गए तब ये जान बचाने के लिए बाथरूम में घुस गया। लेकिन दुर्भाग्य से छलावे के चंगुल में फंस गया,
लेकिन सर, बंद कमरे में उसे छलावा ने कैसे मारा? दरवाजा तो दोनों ओर से बंद था, मोहिते ने पूछा। बख्शी बोला, जब विलास अंदर खड़ा रो रहा होगा तब छलावा वहां आया होगा और उसे खिड़की के पास बुलाकर उसकी आंख में सुआ घोंप दिया होगा। यह हो सकता है कि विलास खिड़की के पास ही खड़ा हो। मैंने पिछली दीवार पर किसी के रगड़ के ताजा चिन्ह देखे हैं जो किसी के दीवार से सटने पर ही बने हैं। और एक बात, अगर विलास उसके बुलाने पर खिड़की तक गया, इसका मतलब छलावा उसका पूर्व परिचित रहा होगा। इससे मेरी इस थ्योरी को भी बल मिलता है कि छलावा आपस का ही कोई व्यक्ति है। अगले दिन अखबार पुलिस चौकी में छलावे द्वारा किए गए खून की खबरों से भरे पड़े थे। लोगों में भय बढ़ता जा रहा था, लेकिन छलावा अदृश्य था। कौन है ये छलावा और क्या हुआ आगे? क्यों मारा उसने इतने लोगों को? आखिर क्या है उसकी आगे की चाल? जानने के लिए सुनिए छलावा का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।